हरे कृष्णा। आज श्री विजयदशमी है, क्योंकि इस दिवस पर प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध करके विजय प्राप्त किया था, इसलिए इस दिवस को विजयदशमी कहते हैं। आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे श्री राम, उनका अवतार और उनकी लीलाओं के बारे में, किस तरह से उन्होंने राक्षस सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। आज के दिवस का महत्व यही है कि हमेशा धर्म की जीत होती है। सत्यमेव जयते, पाठशाला से हम सब सुनते आए हैं, पाठशाला में हमको बताया जाता था सत्यमेव जयते, लेकिन बाहर जगत में मिथ्यमेव जगते, मिथ्या ही विजयी है। मिथ्या मतलब इंद्रिय तृप्ति, भोग, ये मिथ्या है। और भगवान और भगवत सेवा अर्थात भक्ति, ये सत्य है। तो सत्य का जीवन अगर बताना है, अगर हमें सत्यमेव जयते कहना है तो हमें भगवान का भक्त होना चाहिए, फिर हम सत्यमेव जयते कह सकते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए अंत में जीत निश्चित है, क्योंकि भगवान उनके तरफ होते हैं। अर्जुन को यह पता था, इसलिए जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ में पहुंचे थे श्री कृष्ण के पास द्वारका में, तो कृष्ण ने पूछा था कि या तो आप मेरी सेना ले लो या आप मुझे चुनो, दोनों में से एक आपको चुनना होगा। उस समय अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण को चुना। बड़े खुश होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सेना को चुना। दुर्योधन भौतिक दृष्टि से सोच रहा था, वो सोच रहा था कि कृष्ण तो एक है लेकिन उनकी सेना लाखों है, तो लाख कहां और एक कहां, तो कितने सारे लाख सैनिक हैं, ये एक आदमी क्या भला कर पाएगा, कितना भी शूरवीर हो, लेकिन यहां पे तो लाखों सैनिक हैं। तो भौतिक दृष्टि से गणना करते हुए दुर्योधन के मन में ये कोई संशय ही नहीं था कि मुझे तो श्री कृष्ण की सेना चाहिए, श्री कृष्ण अकेले नहीं चाहिए। जिस हद तक दुर्योधन को विश्वास था उसके स्वतः खुद के निर्णय के बारे में, उतना ही विश्वास अर्जुन को अपने निर्णय में था, क्योंकि अर्जुन को पता था कि श्री कृष्ण मेरे तरफ होंगे तो लाखों क्या करोड़ों करोड़ों सैनिक भी आ जाएं, सारे ब्रह्मांड के सैनिक भी आ जाएं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए भगवद गीता के अंत में संजय बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम, कि हे धृतराष्ट्र, जहां पे योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां पे गांडीव बाण धारण करने वाले अर्जुन हैं जो उनके भक्त हैं, वहां पर श्री मतलब ऐश्वर्य सौंदर्य, श्री विजय विजय जीत होगी, और वहां पर नैतिकता होगी। ध्रुवा नीति मति मम, ये मेरा मत है हे धृतराष्ट्र, और निश्चित रूप से जान लो कि ये पक्का होगा, ऐसे ही होना है। ध्रुवा ध्रुवा मतलब ये हमेशा रहेगा ऐसे। इस तरह से जब हम भगवान के पक्ष में आते हैं तो जो अभक्तों का पक्ष है, भला ही भौतिक दृष्टि से कितने भी मजबूत क्यों न लगे, भक्तों की जीत आखिर में निश्चित है। लेकिन अगर बीच बीच में हम इधर से उधर करते रहें, थोड़ी देर भगवान की सेना में माया के विरुद्ध युद्ध करें, कभी कभी माया के सेना में जाके भगवान के विरुद्ध युद्ध करें तो फिर ऐसा ठीक नहीं होगा। एक बार हमने चयन कर लिया कि हमको भगवान की सेना में होकर युद्ध करना है माया के खिलाफ, तो बस हमें अच्छी तरह से अटल रहना है इस मार्ग में, फिर हमारी जीत निश्चित है। बाहरी युद्ध ये ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है उसकी इस दुनिया में, लेकिन इससे महत्वपूर्ण है हमारी अंदर की जीत, हमारे मन, हमारी इंद्रियों के ऊपर काबू पाना, ये सबसे बड़ी जीत है। कितने बड़े बड़े राजा हुए आजकल इतिहास में, ऐसे बड़े राजा हुए जो इतने शूरवीर थे, जिन्होंने सारे पृथ्वी को वश में कर लिया, परंतु वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। तो अगर कोई व्यक्ति भले बहुत बड़ा राजा न हो, एक साधारण आदमी हो, परंतु अगर वो भगवान का भक्त है तो वो अच्छी तरह से अपने मन को, इंद्रियों को वश में कर पाएगा। और हमें समझना चाहिए कि ये सबसे बड़ा शूरवीर सैनिक है, क्योंकि उसने ऐसे एक चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है जो बड़े बड़े राजा, अतिरथी, महारथी भी नहीं कर पाए, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो चाहे अंदर का युद्ध हो या बाहर का युद्ध हो, जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो अंततः हमारी जीत निश्चित है। अब देखिए, जब श्री राम के साथ जो वानर सेना थी वो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, तो दोनों में तो कोई बराबरी की बात ही नहीं थी। रावण की सेना, उनके पास तो सारे अस्त्र शस्त्र थे, तरह तरह की योग सिद्धियां थीं, धनुष बाण बहुत सारे अन्य अस्त्र भी थे, और वानर सेना के पास क्या था? उनके अस्त्र थे नाखून, उनके दांत, उनकी भुजाएं, पत्थर, पेड़, पहाड़, ये उनके अस्त्र। जो भी कुछ मिलता था उठा के फेंकते थे, इस तरह से उन्होंने युद्ध किया। ऐसे लोगों के साथ में जिनको सारे योग सिद्धियां मालूम थे और जिनको इतने सारे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे जिनके पास, लेकिन फिर भी उनका युद्ध हुआ, उनका जीत हो गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उनके साथ में भगवान थे, क्योंकि ये सारे वानर सेना धर्म के पक्ष में होकर युद्ध कर रहे थे, और रावण के लिए तो हार निश्चित थी। जो अधर्म के पथ में चलते हैं उनको बहुत लोगों का श्राप लेना पड़ता है, और रावण तो दुष्ट लोगों के शिरोमणि हैं। जब भी कोई दुष्ट आदमी का नाम लिया जाता है तो बोलते हैं ये तो रावण के जैसा आदमी है, या ये तो हिरण्यकश्यप जैसा आदमी है। लेकिन हिरण्यकश्यप थोड़ा लंबा नाम पड़ जाता है, रावण का नाम सबने सुना है, तो रावण का नाम भी अमर हो गया है इतिहास में। तो रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति जो कि अधर्म के पक्ष में था, असुरों का शिरोमणि, उसने इतने सारे अत्याचार वगैरह किए थे कि कितने सारे लोगों का श्राप उनके ऊपर पड़ा था। सबसे पहले तो सीता देवी का श्राप पड़ा था, और इतिहास में ब्रह्मा जी ने और रंभा और पुंजिका स्थली नाम के अप्सराओं ने, कुबेर के पुत्र नल कुवर ने, वेदवती ने, ऐसे कितने सारे लोगों ने उनको श्राप दिए थे, और ऐसे श्राप की वजह से अर्जुन का सब कुछ क्षीण, रावण का सब कुछ क्षीण होना निश्चित था। लेकिन वानर सेना के साथ श्री कृष्ण जो कि श्री राम के रूप में आए थे त्रेता युग में, उनका आशीर्वाद था, इसलिए उनको, उनके लिए जीत निश्चित था। तो हमें वो चीजें भौतिक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी परीक्षित महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि कौरवों की जीत निश्चित थी अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि सैनिकों की संख्या कौरवों की ज्यादा थी। सैनिकों में से सबसे बड़े बड़े योद्धा जैसे भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब कौरवों की सेना में थे और पांडवों की सेना में थे अर्जुन इत्यादि। लेकिन भीष्म देव के सामने अर्जुन भी क्या करते? ऐसा कोई कारण नहीं है भौतिक दृष्टि से जिससे कोई अनुमान लगा सके कि पांडवों की जीत होने वाली है भौतिक दृष्टि से। लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले धृतराष्ट्र के हृदय में कंपन होने लगी। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेयता युत्सव, जब धर्मक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सारे सैनिक इकट्ठे हुए, मामेक पांडवास चैव, जब मेरे पुत्र और पांडव जब एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया है संजय? अब जब युद्ध भूमि पर दो लोग एकत्र होते हैं, दो सेनाएं एकत्र होती हैं, तो क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे ना। तो पूछने का क्या कारण था धृतराष्ट्र का? पूछने का कारण ये था कि धृतराष्ट्र को अपने हृदय में पता था कि पांडव धर्मपरायण है और कौरव पापी हैं। धृतराष्ट्र जानते थे कि मेरे पुत्रों ने अन्याय किया है, अधर्म का कार्य किया है, पांडवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उनका राज्य छीन लिया है, उनके साथ धोखेबाजी की है, उनकी पत्नी का अपमान किया है। इस तरह से उनको मन में डर था। किस बात का डर था? उनको डर था कि पांडवों का जो धर्म का पालन है वो इतना शक्तिशाली है कि कौरवों की हार निश्चित थी। धृतराष्ट्र वैसे अच्छे आदमी थे, केवल उनका मन कमजोर था। क्यों मन कमजोर हो गया था? अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति आसक्ति होने की वजह से। जब इस दुनिया में हमारी आसक्ति हो जाती है अन्य लोगों से, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है और कई बार जो सही है हम उन चीजों को नहीं कर सकते हैं। धृतराष्ट्र को कितने लोगों ने बताया, भीष्म ने, विदुर ने, बहुत लोगों ने बताया कि अपने पुत्र के प्रति आसक्ति छोड़ दो, आपका पुत्र दुर्योधन दुष्ट है, घमंडी है और आपके वंश का नाश करके रहेगा, इसलिए इसको आप त्यागो और अपने वंश को बचाओ और लाखों लोगों की जान बचाओ। लेकिन धृतराष्ट्र कर नहीं पाए इस चीज को। हालांकि अपने पुत्र को बुलाकर कभी डांटते, लेकिन फिर भी आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो बिल्कुल कड़क रूप से दुर्योधन को रोक नहीं पाए कि नहीं, मैं राजा हूं, मैं जो बोलता हूं वो करो, तुम चुप बैठो इधर, नहीं बोल पाए। तो धृतराष्ट्र थे अच्छे आदमी और थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान भी था, इसलिए वो समझ पाए कि हालांकि भौतिक दृष्टि से मेरे पुत्रों की जो सेना है वो अधिक शक्तिशाली है, परंतु पांडवों के पास वो शक्ति है जो मेरे पुत्रों के पास नहीं है, और वो क्या है? धर्म की शक्ति, क्योंकि धर्म के पिता श्री कृष्ण उनके साथ में है। और उसके अलावा ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र में धार्मिक लोगों की शक्ति बढ़ जाती है और अधर्मिक लोगों की शक्ति कम हो जाती है। जो अधर्म के जगह हैं उनमें अधार्मिक लोगों की शक्ति बढ़ जाती है, धार्मिक लोगों की शक्ति कम हो जाती है। जैसे शराब के अड्डे में थोड़े तरह के लोगों की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन अगर भक्त को ले जाकर वहां बिठाया जाए उसकी तो शक्ति पूरी क्षीण हो जाएगी, वो बोलेगा यहां मैं क्या कर रहा हूं, वो तो भाग जाएगा वहां से। उसी तरह से अधर्मिक लोगों को आकर मंदिर में सत्संग में बिठाया जाए तो वो तो सोचेंगे अरे हम कहां आ गए, ये क्या है, यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। रात में राक्षसों की शक्ति बढ़ती है क्योंकि रात तमोगुण का कार्य समय होता है, तो तमोगुण में तामसी लोगों की शक्ति बढ़ती है। दिवस में रजोगुण व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है और प्रातः काल में सतोगुण व्यक्तियों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमें अगर सतोगुणी बनना है तो हमको जल्दी सुबह उठ के भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्योंकि वो समय बड़ा अनुकूल होता है, तो स्थान का, वातावरण का, समय का भी महत्व होता है, प्रभाव होता है। तो जब हम धाम में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मन के ऊपर कितना प्रभाव होता है धाम का, भक्तों के संग का। तो कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अनादिकाल से कितने सारे यज्ञ इत्यादि हुए थे, धार्मिक क्रियाएं। इसलिए धृतराष्ट्र जानते थे कि यहां पर आकर पांडवों की शक्ति बढ़ेगी, कौरवों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और मेरे पुत्रों का विनाश हो जाएगा। इस तरह से कितने उदाहरण इतिहास में हैं कि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी की हार निश्चित है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो वानर सेना के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरी बात यह है कि क्या भगवान रामचंद्र को वानर सेना की आवश्यकता थी रावण का वध करने के लिए? नरसिंहदेव तो अकेले आए थे, वो तो साथ में कोई सेना को लेकर नहीं आए। आपने कभी तस्वीर देखा है नरसिंहदेव भगवान, क्या अपने साथ में विष्णु दूतों को ले आते हैं युद्ध करने के लिए? कैसे आते हैं नरसिंहदेव? अकेले आते हैं। और अकेले आकर उन्होंने न केवल हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन साथ साथ उनके लाखों करोड़ों सैनिकों का भी वध कर दिया, केवल अपने उनके नाखूनों से। उनके नाखून इतने बड़े शस्त्र थे कि जैसे जैसे ये सैनिक आक्रमण करते गए, केवल उनको नाखून से ऐसे कर दिया, लाखों एक साथ खत्म हो जाते। तो ऐसे भगवान जिनको कोई सेना या अन्य सैनिकों की, अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं है, ऐसे भगवान जब श्री राम के रूप में आए तो रावण जैसे राक्षस का वध करने के लिए उनको क्या एक वानर सेना की जरूरत थी? थी कि नहीं थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी आए, उनको साथ में लेकर आए, क्या कारण हो सकता है? हाँ, कई कारण है। एक तो नरसिंह देव भगवान के रूप में ही आए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य हूं। नरसिंह देव के कोई माता पिता इस पृथ्वी पर नहीं आए। आपको मालूम है नरसिंह देव के पिताजी का नाम, माताजी का नाम? नरसिंह देव की बाल लीला सुनी कभी? नहीं। नरसिंह देव कभी मनुष्य समाज में आए नहीं, नहीं पशु समाज में। नरसिंह देव आए तो केवल भगवान के रूप में ही आए, थोड़े समय के लिए रहे, उनकी लीला कर दी, चले गए वापस, बस। लेकिन श्री रामचंद्र मनुष्य समाज में प्रकट हुए थे, इसलिए जैसे मनुष्य समाज में उचित है, जैसे प्रथा है, वैसे उन्होंने किया। अभी जब भी कोई राजा युद्ध में जाता है तो अकेला नहीं जाता, अपनी सेना को लेकर जाता है। तो अब श्री रामचंद्र के साथ कौन सी सेना थी? उनको तो वन में भेज दिया गया था। दशरथ महाराज और कैकेयी ने उनको आदेश दिया था कि आपको अब 14 साल वनवास में जाना है। तो वनवास में तो केवल ऋषि मुनियों का पोशाक पहन के, बालों को जटाओं के रूप में डाल के, अब उनके साथ कौन सी सेना थी? केवल लक्ष्मण, राम और सीता देवी, ये तीन ही थे। जब उन्होंने जनस्थान में देखा कि हमारी सीता देवी के ऊपर खतरा है, तो अकेले उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। अपनी शक्ति की एक झलक दिखाई उन्होंने। इससे ही श्री रामचंद्र को, रावण को बड़ा गुस्सा आया और फिर उन्होंने मरीचि से कहा कि जाओ सीता देवी का भरण करके ले आओ। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य समाज में प्रकट होने के कारण श्री रामचंद्र को एक मनुष्य की तरह ही युद्ध भी करना था, इसलिए साथ में वो ऐसे सेना ले आए जो उनको जंगल में मिले जब वो वनवास में गए थे, क्योंकि और कोई सैनिक उनके पास थे नहीं, कोई राज्य था नहीं। वहां पर जब उन्होंने कबंध नाम के एक राक्षस का वध किया था जंगल में, दंडकारण्य में, तो कबंध ने कहा था मृत्यु के समय कि आगे जाइए और वहां से आप सुग्रीव से मैत्री की समझौता बनाइए। सुग्रीव को आपकी जरूरत है और आपको सुग्रीव की जरूरत है, तो परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हुए आप दोनों अपने अपने इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि सुग्रीव को अपने भाई वाली ने बाहर निकाल दिया था राज्य का, और प्रभु रामचंद्र जी को अपनी पत्नी सीता देवी को वापस ढूंढ लाना था। सुग्रीव के पास सेना थी, श्री रामचंद्र जी के पास शक्ति थी, तो दोनों का मिलन हो गया। और इस तरह से श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता का समझौता बनाया और दोनों इकट्ठे निकल पड़े लंका की ओर। तो ये पहला कारण है कि श्री रामचंद्र ने वानर सेना का उपयोग किया। दूसरा कारण क्या है, कोई बताएंगे? जो भी आपके मन में विचार आए, क्या हो सकता है दूसरा कारण? उनको भक्तों, उनके भक्तों का सेवा स्वीकार करने के लिए। अब जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को बचाने के लिए भी आते हैं, भक्तों के साथ लीला करने आते हैं, भक्तों को संग लेने के लिए आते हैं, भक्तों को संग देने के लिए आते हैं, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपनी स्वेच्छा से वो करते हैं। अपने ही भक्तों के साथ जो उनका प्रेम का संबंध है उसका रस बढ़ाने के लिए। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि देवी देवता भगवान नहीं है और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, मंत्री की तरह जो इस ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभालते हैं, तो ये बताइए कि क्या भगवान ब्रह्मांड को अकेले संभाल नहीं सकते? क्या भगवान की शक्ति में कोई कमी है कि उनको देवताओं की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्या कारण है? देवी देवताओं को क्यों लगाते हैं भगवान व्यवस्थापन में? क्या भगवान अकेले इंद्रदेव का कार्य, वरुण देव का कार्य, ब्रह्मा जी का कार्य इत्यादि नहीं कर सकते? फिर उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए, उनको सेवा में लगाने के लिए, उनको सेवा का मौका देने के लिए। तो ये तीसरा कारण है। दूसरा कारण ये है कि प्रभु रामचंद्र जी अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। और तीसरा कारण है कि वो अपने भक्तों को सेवा का मौका देना चाहते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं भौतिक जगत में, तो उनके साथ में उनके भक्त भी आते हैं। ऐसे नाटक में मजा नहीं है जिसमें एक ही पात्र है, एक ही अभिनेता है, नट है, अच्छा लगेगा? जब बहुत सारे पात्र हैं और अपने अपने भूमिकाएं सब अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो फिर अच्छा लगता है। समझिए कि एक नाटक में कोई राजा है और वो राजा ही देखे आप 2 घंटे नाटक में अकेला राजे को ही देखते रहे, तो बोलेंगे ये कैसा नाटक है, अच्छा नहीं है। जब नाटक है तो राजा के साथ बहुत कुछ और होना चाहिए, सैनिक होने चाहिए, महारानी होनी चाहिए, और कोई उनके युद्ध करने वाला कोई होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से भगवान आएंगे तो अकेले आएंगे तो क्या फायदा है, किसके साथ लीला करेंगे? वो भक्त तो चाहिए ना। तो इसलिए भगवान के भक्त जब भगवान के साथ में अवतीर्ण होते हैं तो भगवान की लीला में वो साथ देते हैं, भगवान उनको अपनी सेवा में लगाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने भी सारे देवताओं को श्री रामचंद्र के प्राकट्य के पहले ही बता दिया था कि देखो मैं थोड़ी ही देर में प्रकट होने वाला हूं, तुम लोग भी पृथ्वी लोक के ऊपर जितने, या जो देवलोक किम पुरुष लोक इत्यादि में जितने भी सब अप्सराएं हैं और वानर हैं, उनके माध्यम से ऐसे पुत्रों को की उत्पत्ति कीजिए जो कि बहुत शक्तिशाली होंगे, जिनमें आपके सद्गुण होंगे और जो मेरी सहायता कर सकें, मेरी लीला में भाग ले सकें। तो ये जो वानर सेना है ये कोई साधारण नहीं थे, ये सब भगवान के भक्त थे, क्योंकि देवतागण भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र इनकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, तीसरी बात। और चौथी बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वानर सेना कोई साधारण बंदर है। ऐसे लोग सोचते हैं अक्सर भारत में, जो भौतिक दृष्टि से रामायण पढ़ते हैं या जो टेलीविजन में रामायण देखते हैं, तो केवल वानर सेना को साधारण बंदर जैसे दिखाते हैं। लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं है, इनकी इतनी शक्ति है कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। अब देखिए हनुमान की शक्ति, आपने तो हनुमान जी के बारे में बहुत सारी लीलाएं सुनी हैं। बचपन में ही वो सूर्य को खाने के लिए एक सेब समझकर, सफरचंद समझकर उसको खाने के लिए उड़े थे आकाश में। अब बताइए कोई छोटा सा बंदर ऐसे कर सकता है? हनुमान जी अकेले कूद गए थे भारत से लंका, कोई बंदर कर सकता है? भारत से लंका की बात दूर है, जब राम और लक्ष्मण घायल हो गए थे इंद्रजीत के तीरों से, नागपाश से, और फिर इंद्रजीत ने और एक बार लक्ष्मण को भी घायल किया था, तो उस समय हनुमान जी हिमालय के पास गए थे, ऋषभ पर्वत के पास में, और वहां से वो पहाड़ के पहाड़ उठाकर लेकर वापस आए थे। तो सोचिए ये कोई साधारण बंदर कर सकता है? हनुमान जी जब समुद्र पार करके जा रहे थे लंका की ओर सीता देवी को ढूंढ निकालने के लिए, तो उस समय उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा बनाया था महेंद्र पर्वत के ऊपर कि अन्य वानर उनको देख भी नहीं पाए, इतने बड़े हो गए थे, आसमान तक उनका शरीर हो गया था। और जिस तरह से एक रॉकेट या एरोप्लेन जब आवाज करता है शुरू होने के पहले, ऐसे हनुमान जी तैयारी कर रहे थे, और जब उड़े तो ऐसी तेज हवा आई कि वहां पहाड़ के पहाड़, झाड़ के झाड़ सब उनके पीछे पीछे उड़ के समुद्र में गिर पड़े। तो कई मीलों के दूरी तक समुद्र में झाड़ पहाड़ सब पत्थर पत्थर पड़े हुए थे, जो कि हनुमान जी के टेक ऑफ के साथ में उनके साथ में भी आए थे, और इतने बड़े हो गए थे। और जब तरह तरह के राक्षसियों से मुलाकात हुई उनकी, उन्होंने कितने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। सुरसा नाम की राक्षसी आई तो उनके मुख में से जाकर वो निकल पड़े, लेकिन हनुमान जी एकदम छोटे से भी हो गए, छोटे होकर उनके मुख से निकल के चले गए, क्योंकि वो राक्षसी ने कहा कि जब तक यहां से जो भी जाता है मेरे मुंह के अंदर नहीं जाएगा वो नहीं जा पाएगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, एकदम छोटे हो गए, जब वो राक्षसी ने मुंह खोल दिया था जल्दी से मुंह के अंदर से होकर बाहर निकल आए। इसके पहले कि राक्षसी को पता चले कि वो अंदर गए बाहर आए, तब तक हनुमान जी एकदम छोटे होकर अंदर से बाहर आकर फिर से बड़े होकर आगे चल गए। अगर आप अच्छी तरह से गौर से रामायण पढ़ेंगे, ऐसे हर एक वानर की कथा पढ़ेंगे तो उनके अद्भुत शक्ति के बारे में हमें पता चलेगा। अंगद ने भी कितने अद्भुत कार्य किए, सुग्रीव ने भी कितने अद्भुत कार्य किए, वाली ने कितने अद्भुत कार्य किए, वाली जो कि सुग्रीव के बड़े भाई थे, जिनका वध श्री रामचंद्र ने किया। बताया जाता है कि वाली ने बड़े आसानी से रावण को केवल अपने भुजाओं में, बाएं हाथ की भुजाओं में ऐसे सर उसके गर्दन पकड़ ली थी, जब रावण पीछे से चुपके से आ रहा था वाली को पकड़ने के लिए। वाली अपना गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, उत्तर पृथ्वी के उत्तर भाग के सागर के तट पर बैठकर, और उस समय रावण पीछे पीछे से हल्के से आए, वाली को पता चला कि कोई आ रहा है और उसकी इच्छाएं अच्छी नहीं लग रही हैं, तो घूमे भी नहीं, जैसे रावण पास में फट करके पकड़ के उसको रख दिया यार, और उनके साथ में उड़ते हुए वापस चले गए पूरा। अब देखिए उत्तर रशिया से लेकर इधर तक आ गए रावण को ऐसे साइड में पकड़ के, ये वाली की शक्ति। तो ये सब वानर सेना है, कोई साधारण ऐसे नहीं है। जब श्री रामचंद्र की सेना लंका के बाहर पहुंच गई त्रिकूट पर्वत के ऊपर, तो उस समय आश्चर्यचकित हुए रावण इस सारे सागर को देखकर, पानी का सागर नहीं, वानरों का सागर, सब जगह वानर 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 वानर। तो इनको देखने के लिए रावण अपने किले के बाहर चले आए ऊपर, उत्तर द्वार से सब देख रहे थे, अरे इतने सारे करोड़ों करोड़ों वानर। और दूर से श्री रामचंद्र और सुग्रीव ने भी देखा कि वो रहा रावण, तो सुग्रीव अपने आप को रोक नहीं पाए, एक छलांग मारी, छलांग मार के सीधे पहुंच गए रावण के पास जो कि इतने दूर थे, और पहुंचे तुरंत पहुंचकर कहने लगे, कि मैं श्री राम का भक्त सुग्रीव हूं और मैं आज तुम्हारी हत्या करने वाला हूं। तो रावण को बड़ा गुस्सा आया और तुरंत सुग्रीव रावण के ऊपर कूद पड़े और ऐसे कूदे कि रावण के सिर से जो मुकुट है वही गिर पड़ा और रावण को एक मुक्का प्रहार किया और फिर रावण और सुग्रीव के बीच में मल्लयुद्ध हुआ। वहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर लौटते गिरते और ऐसे लग रहा था कि कोई विजय नहीं हो पा रहा है। रावण सारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली राजा था, सारे देवताओं को भी काबू कर लिया था, लेकिन अब सुग्रीव इस तरह से मल्लयुद्ध कर रहे थे रावण के साथ कि रावण भी जीत नहीं पा रहे थे। फिर रावण ने सोचा कि अब मुझे मेरी योग सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये कोई साधारण बंदर नहीं लगता। और जैसे ही सुग्रीव को पता चला कि ये योग शक्ति का प्रयोग करने वाला है तो तुरंत वहां से निकल पड़े, एक छलांग मारकर फिर से श्री रामचंद्र के बाजू में आके खड़े हो गए। तो श्री रामचंद्र ने कहा कि अरे सुग्रीव, तुमने क्या किया? ठीक है, बहुत शूरवीरता दिखाई, अद्भुत शूरवीरता है, क्योंकि सीधे रावण के पास जाके वो कुश्ती करना उसके साथ आ जाना ऐसे, लेकिन फिर भी सोच लो, अगर रावण ने हत्या की होती तुम्हारी तो यहां क्या हो जाता? सारे तुम्हारे सैनिक निराश हो जाते। हाँ, मैं तो रावण का वध तो कर ही देता, लेकिन उसके बाद में मैं क्या करता ये जानते हुए कि तुम मेरे सामने होते हुए तुम्हारी हत्या हो गई, मैं कैसे जी पाता? मुझे भी मेरे प्राण को त्यागना पड़ता। तो इस तरह से सुग्रीव की शक्ति ऐसी थी। और वाले के पुत्र अंगद, उसने भी इसी तरह से एक बार ऐसे कार्य किया। जब रावण दूसरी बार आके वानर सेना को देखने के लिए आया था तो अंगद भी कूद के सीधे रावण के पास आया, क्योंकि इस समय प्रभु रामचंद्र ने अंगद को खुद भेजा था कि जाओ मेरी ओर से संदेश दे दो रावण को। और अंगद ने संदेश दिया कि हे रावण, ये अच्छी तरह से सुन लो कि तुम बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरे पत्नी का अपहरण किया है और तुम्हें इतने सारे लोगों का शाप हुआ है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु तुम तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। अगर तुम्हें मृत्यु का सामना नहीं करना है तो तुरंत मेरी पत्नी को लौटा दो और मेरे सामने आके सर झुकाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे तुमने मेरी तीरों से शुद्ध करना होगा। तो जब ऐसे बातें सुनी रावण ने तो रावण को बड़ा गुस्सा आया, जोर से चिल्लाए और चिल्लाकर अपने सैनिकों से कहा कि पकड़ लो इसको। तो चार राक्षस आए पकड़ने के लिए अंगद को। अंगद को चार राक्षसों ने पकड़ा और अंगद ने उनको पकड़ने के लिए सुविधा दे दी, क्योंकि अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने पकड़ लिया आके अच्छी तरह से। फिर अंगद ने सोचा चलो अब थोड़ा कुछ मस्ती हो जाए, तो सीधे उड़ गए आसमान में और जैसे उड़े ये चार भी उनके पीछे आ गए, उनके हाथ पकड़ते पकड़ते, और फिर ये चारों के चारों गिर गए नीचे, सीधे रावण के पैरों के पास गिर गए। और फिर वहां पर पास में आए अंगद और बड़े जोर से मुक्का प्रहार किया रावण के ऊपर। इस तरह से रावण ने फिर से उनको उनके ऊपर आक्रमण किया, दोनों के बीच में अच्छा युद्ध हुआ और फिर भी अंगद वहां से निकलकर वापस लौट के आ गए। कहने का मतलब है कि हरेक वानर के पास ऐसे ऐसे अद्भुत शक्तियां थी। वो अपना शरीर का रूप बदल सकते थे, बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे। जैसे नील नाम के एक सेनापति थे, तो ये नील जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो रावण की शक्ति बहुत थी, अस्त्र शस्त्र बहुत थे। बेचारे नील के साथ पास क्या था, पत्थर थे, पहाड़ थे, झाड़ ये पेड़ थे, वैसे ही कुछ था। तो जब रावण ने आक्रमण किया नील को तो नील ने अपना शरीर बहुत कम बनाया, छोटा बनाया, और रावण के रथ के ऊपर जो ध्वज था उसके ऊपर बैठ गया, कभी रावण के धनुष के ऊपर, कभी रावण के कंधे के ऊपर, इधर उधर जल्दी जल्दी से। रावण देख भी नहीं पाया कहां उनसे तीर मारना है और रावण भी आश्चर्यचकित हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वानर सेना भी हालांकि केवल पहाड़ों से पेड़ों से लड़ रहे थे, ये कोई साधारण वानर नहीं थे, ये देवताओं के अंश थे और इनके अंदर ये विशेष
शक्ति थी। तो खैर ये सब कारण हैं, और साथ साथ क्योंकि रावण को इतने सारे शाप मिले थे, वैसे भी रावण का हार तो निश्चित था ही। इस तरह से प्रभु रामचंद्र को जरूरत नहीं होते हुए भी उन्होंने वानर सेना का संग स्वीकार किया। और एक कारण है कि प्रभु रामचंद्र जी ने वानर सेना का प्रयोग युद्ध में किया। और कोई कारण आपको मन में आता है? दिखाना चाहते हैं कि कोई पशु प्राणी भी मेरी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए भक्ति कितना सुलभ है। अन्य जो धर्म है उनमें भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है ये जाति का है, वो ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण ये सब कर सकता है, जो ब्राह्मण नहीं है वो ये कार्य नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कोई बंधन नहीं है। यहाँ कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सभी के लिए निमंत्रण है, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश धर्म का हो, कोई भी आर्थिक परिस्थिति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, सभी लोग कर सकते हैं। मनुष्यों की बात तो दूर है, पशु प्राणी भी कर सकते हैं। और रामायण में हम देख चुके हैं जटायु पक्षी थे, वानर सेना ये मनुष्य नहीं थे, वानर थे। साथ साथ जांबवान कौन थे? वृक्षराज। तो वृक्षों का समाज भी उनके साथ में था। तो इससे प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे। तो इसका मतलब है कि भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि देखो मेरी सेवा कोई भी कर सकता है। और क्या कारण? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा युद्ध में? उन्होंने कहा कि मैंने इन सबको पहले से मार दिया है, केवल तुम मेरे निमित्त बनो। बराबर है ना? निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त बनो, मैंने इन सारे कौरवों की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को यश श्रेय देना चाहते थे। ठीक उसी तरह से इस युद्ध में भी श्री रामचंद्र रावण को आसानी से वध कर पाते, लेकिन वो वानर सेना को हनुमान अंगद इत्यादि सुग्रीव इनको श्रेय देना चाहते थे, ताकि आने वाले पीढ़ियों में करोड़ों करोड़ों साल में लोग श्री रामचंद्र के भक्तों का स्मरण करें। अगर ये सारी घटना नहीं हुई होती तो आज हम कहां हनुमान से मिलते? हाँ, हनुमान के बारे में सुनते, सुग्रीव के बारे में सुनते, श्री राम कभी मिलते भी नहीं उनको अगर सीता का अपहरण न होता। और सीता का अपहरण न होता तो युद्ध नहीं होता, दुष्टों का नाश नहीं होता। तो इसका मतलब है कि भगवान ये बतलाना चाहते थे कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं, मेरे भक्त मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे भक्त मेरे लिए नहीं करेंगे? यहां तक कि मेरे भक्त जो हैं मेरे लिए अपना प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो भगवान वानर सेना और वृक्षों की सेना का इस्तेमाल करके ये भी हमें सिखाना चाहते थे कि देखो मेरे भक्त मेरे लिए कितने प्रिय हैं, मेरे भक्त मेरे लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से वानर सेना का उपयोग करके प्रभु रामचंद्र ने रावण और रावण की सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। कितने सारे लाखों लाखों वानर और राक्षसों की हत्या हुई, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने अंत में केवल अपने दृष्टि मात्र से सारे वानर सेना को पुनः जागृत कर दिया। रावण का वध करने के बाद विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया और पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या आ गए। और जिस दिन वो अयोध्या आए वो कौन सा दिन है? दीपावली। तो दीपावली का महत्व यही है कि उसी दिन श्री राम अयोध्या लौट कर आए। उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या के निवासियों ने जगह जगह दीप प्रज्वलित किए। तो दीपावली और विजयदशमी जितने दिन हैं इनमें, हम समझ सकते हैं कि इन दिनों के बीच में श्री रामचंद्र लंका से होकर अयोध्या में आए। तो आज के दिवस पर उन्होंने रावण का वध किया और दीपावली के दिवस पर वो अयोध्या में फिर से प्रवेश कर गए। जब श्री रामचंद्र रावण का सामना कर रहे थे युद्ध भूमि पे, जैसे जैसे वो तीर चलाते और एक एक सर काट डालते रावण का, तो दूसरा सर उसी स्थान पे आ जाता, दूसरा सर काट डालते तो और एक सर वहां पर आ जाता। ऐसे करते 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 जितने भी सर काट डाले रावण के, उतने ही नए 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 सर आने लगते, क्योंकि रावण को ऐसे वरदान था। आखिर में कुबेर ने और अन्य देवताओं ने श्री रामचंद्र को बताया कि ऐसे नहीं, आपके ब्रह्मास्त्र को काश्मीर आप बुलवाइए और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध कीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र को बुलाया और उसको छोड़कर मंत्रों के द्वारा रावण के वक्ष स्थल पर छोड़ दिया और इस तरह से रावण की हत्या हो गई। तो इसके पीछे कई उपदेश ग्रहण करने लायक चीजें हैं। जैसे हमारे हृदय के अंदर भी रावण बैठे हैं, न जाने कितने सर हैं। वो रावण के तो केवल 10 सर, उनका नाम था दशग्रीव, ग्रीव मतलब सर, तो 10 सर थे उनको, रावण को, दशग्रीव को। लेकिन हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हैं कितने सर हैं, इन सरों के नाम क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, ये कितने सारे हैं, अनगिनत है हमारे अंदर। और हम देखते हैं कि जितना भी तीर हम मारते हैं वो फिर से फटक करके ऊपर चले आते हैं। हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमने इन दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर से वो आ जाते हैं। इसलिए अगर हमेशा के लिए हमें इन सारे असुरों का, हमारे हृदय में बैठे हुए रावण का वध करना है, तो हमें श्री रामचंद्र का आश्रय लेना है। भगवान श्री कृष्ण श्री राम एक ही है, कोई अंतर नहीं दोनों में। भगवान की शरणागति लेकर, भगवान के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इन राक्षसों का वध हम कर सकते हैं। लंका में श्री रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, भयानक अस्त्र। तो श्री रामचंद्र ने हमें कौन सा अस्त्र दिया है, कौन सा ब्रह्मास्त्र दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जबरदस्त ब्रह्मास्त्र है, बहुत शक्तिशाली, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र से केवल एक शरीर का नाश हो सकता था, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से न केवल एक शरीर का नाश बच सकता है, लेकिन लाखों लाखों शरीर बच सकते हैं। क्योंकि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। जब तक हम भगवान श्री हरि के शरण में नहीं जाते, हमें बार बार यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इस हरिनाम रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के धाम में जा सकते हैं, शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान का प्राप्ति की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण हरे राम, तो ये राम श्री रामचंद्र हैं, श्री बलराम जी भी हैं, परशुराम जी भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, जैसे हमारी भावना। लेकिन आज विजयदशमी के दिवस पर जब हम हरे राम कहेंगे, तो हम सीता राम का स्मरण करेंगे कि आज का दिवस है प्रभु विजयदशमी है, जिस दिवस पर आपने रावण का वध किया था। तो फिर से आज हमारे हृदय में विजयदशमी हो जाए और आप प्रकट होइए हमारे हृदय के भीतर और हमारे हृदय में बैठे हुए रावण को आप खत्म कर दीजिए और आप सदैव प्रकट होते रहिए हमारे हृदय के भीतर। ये प्रार्थना आज विजयदशमी के दिवस पर हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? प्रश्न है, भगवान दिखाना चाहते हैं कि पशु भी मेरी भक्ति कर सकते हैं, तो कलयुग में पशु कैसे भक्ति कर सकते हैं? आजकल मनुष्य मनुष्य नहीं है, पशु ही है ना, द्विपद पशु, दो पैरों वाले पशु हैं। कितने मनुष्य हैं आजकल दुनिया में, हैं कितने मनुष्य हैं, कितने होगी, कितने भारत की जनसंख्या कितनी है? 100 करोड़ से ज्यादा है ना, तो सारे विश्व का कितना होगा? इससे 10 गुना ज्यादा, मतलब करोड़ में कितना है? करोड़ जनसंख्या। तो मनुष्यों की संख्या कितनी है 600 करोड़ में? बहुत कम, ये कह नहीं सकते। तो ये सारे कलयुग के पशुओं के लिए है ना भक्ति मार्ग, ये सब मनुष्य नहीं है। जब तक कि वो धर्म क्या है, भगवान के शरण का महत्व क्या है, ये नहीं जानते, तब तक वो मनुष्य नहीं कहलाते, वो पशु ही रहेंगे। सूट बूट वाले पशु, गाड़ी में घूमने वाले, एयर कंडीशन कमरे में बैठने वाले पशु। तो आजकल के पशुओं के लिए ये मार्ग है। दूसरी बात, जो चार पैरों वाले पशु है और जो उड़ने वाले पशु प्राणी हैं, उनके लिए क्या है? नाम संकीर्तन। पशु प्राणी क्या, जो मक्खी मच्छर हैं, कीड़े हैं, कॉकरोच हैं, जो यहां शायद होंगे, चूहे भी कहीं होंगे या संभाल के बैठिएगा, तो इनका भी उद्धार है। क्योंकि जब वो हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए हम जब भक्त लोग नगर संकीर्तन में जाते हैं, मंदिर में भी जब संकीर्तन होता है, तो कितने पशु पक्षी प्राणी सुनते हैं। यहाँ पे कुत्ते घूमते रहते हैं, भक्तों का दर्शन करते रहते हैं, भक्त लोग जप करते हुए घूमते हैं, कुत्ते लोग आकर उनका संग लेते हैं, उनका भाग्य है ना। तो ऐसे कितने कुत्ते हैं बेलगाम में, उनको ये भाग्य नहीं मिलता, केवल उन कुत्तों को भक्तों का संग क्यों मिलता है? और कभी कभी कोई भक्त होते थोड़ा प्रसाद भी दे देते हैं कुत्ते को, तो कुत्ता प्रसाद भी ले लेता है। इन्होंने भी कोई भक्ति की होगी ना पूर्व जन्म में, हो सकता है इनको कोई पूर्व मनुष्य जन्म मिला होगा किसी जन्म में, कोई पाप किए इसलिए पशु का शरीर मिला, लेकिन कुछ भक्ति भी है इसलिए उनको भक्तों का संग मिल गया है यहाँ पर। इसलिए आए भक्त बताते हैं कि यहाँ पास में बहुत ही खतरनाक कुत्ते रहते हैं जो सबको काटते हैं, लेकिन जब वो धोती कुर्ता देखते हैं तो उसके पास में नहीं आते, तो पहचानते हैं कि ये हमारे ही नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं, इनको छूना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां भक्त हैं वहां पशु प्राणियों को भी संधि मिलती है भक्ति करने के लिए।
हरि बोल।
हरे कृष्णा।
इस उत्सव को दशहरा ये शब्द प्रयोग क्यों किया है?
दशमी से आता है, दसवां दिन तिथि, जिस दिवस पर प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। अर्जुन अमर है क्या, ये प्रश्न है, तो कोई जवाब देंगे? अर्जुन अमर है क्या, ये प्रश्न है, है भी और नहीं भी। अर्जुन के बारे में इतना सब 5000 साल बाद में भी बात कर रहे हैं, और आगे भी चल के लाखों सालों तक जब भी श्री कृष्ण की बात होगी अर्जुन की बात भी तो होगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन अमर है, दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। जहां भी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, अवतार लेते हैं, वहां उनके भक्त भी साथ में जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि, तुमने और मैंने बहुत जन्म अनुभव कर लिए, लेकिन तुम इनको याद नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से याद कर सकता हूं, मुझे पूरी तरह से स्मरण है मेरे कितने सारे अवतार हुए, हर एक अवतार में मैंने कौन से कार्य किए, क्या लीलाएं की हैं, लेकिन तुम जीव हो, भूल जाना तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम भूल चुके हो। इसका मतलब है कि इतिहास में इससे पहले भी अर्जुन श्री कृष्ण के साथ में रहे थे, किसी दूसरे लोक पर, किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे परिस्थिति में, हो सकता है इस रूप में नहीं, इस नाम में नहीं, जैसे कि अब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े थे उनके सामने। परंतु जो जीव अर्जुन हैं, वो श्री कृष्ण के साथ हमेशा करते हैं, जब भी श्री कृष्ण भौतिक जगत में रहते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो अमर है, लेकिन हमारी साधारण दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन को भी ये शरीर छोड़ना पड़ा, अर्जुन को भी ये प्राण त्याग कर वापस जाना पड़ा। और एक प्रश्न है, जब विजय दशमी महोत्सव भगवान श्री रामचंद्र जी का है तो इन 10 दिनों में दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? ये अलग बात है, ये अलग उत्सव है, इसका इससे संबंध नहीं है। वो दुर्गा जी देवी का गुणगान होता है इन इस नवरात्रि के समय। दुर्गा देवी का गुणगान नहीं होता, इंद्र तृप्ति होती है, दुर्गा देवी के नाम पे इंद्र तृप्ति ज्यादा होती है। तो इन दो उत्सव जो हैं ये अलग अलग हैं। भगवान नरसिंह देव भगवान के रूप में आए और चले गए, लेकिन उनके प्रश्न ये है कि हम लक्ष्मी नरसिंह कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी के साथ लीला उन्होंने कब की? इस लीला में तो नहीं की, क्योंकि लक्ष्मी देवी भी नरसिंह देव के पास जाने के लिए डर रही थी। ऐसा भयानक रूप नरसिंह देव ने लिया था, साथ जितने भी सारे देवी देवता आए थे उनकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए। जब नरसिंह देव भगवान हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर बैठे थे, गर्जना कर रहे थे जोर जोर से, तो सारे देवी देवता पीछे पीछे खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े थे घबरा कर। सब लोग एक दूसरे को आगे कर रहे थे, आप पहले, आप जाओ, आप जाओ, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा, आप तो जाओ, आप तो पत्नी हैं। तो लक्ष्मी देवी ने क्या कहा था, इनसे शादी मैंने नहीं की, ये भयानक रूप है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि ऐसी लीला उग्र रूप में नरसिंह देव ने की थी। हिरण्यकश्यप की अथड़ियां जो है उनके गले में माला के रूप में थी, इतना खून सब जगह, खून 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 सब जगह उग्र रूप में। लेकिन प्रहलाद डरे नहीं, प्रहलाद आराम से जाकर हाथ जोड़कर बात करने लगे, प्रार्थना अर्पण करने लगे। तो भगवान के धाम में लक्ष्मी देवी नरसिंह देव के साथ में रहती है। कई जगह आप नरसिंह देव की मूर्ति देखेंगे जिसमें लक्ष्मी देवी उनके गोदी में बैठे हैं और वो शांत रूप में हैं, उनको शांत नरसिंह कहते हैं, और वो वरदान दे रहे हैं। तो भगवान श्री नरसिंह देव अपने धाम में लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं। तम सतिल असुन सुधात इंद्र कामणता सृष्टि ये है कि वो तो सूर्य वंश है, तो चंद्र का नाम उनको कैसे आ गया? राम सूर्य क्यों नहीं, रामचंद्र क्यों? ये तो वंश की बात है, चंद्रवंश सूर्यवंश। कृष्ण चंद्रवंश के थे और राम सूर्यवंश के। लेकिन चांद जो है वो बहुत सुंदर होता है, खास करके शास्त्रों में जब किसी सुंदर व्यक्ति का वर्णन होता है तो उसके चेहरे का एक चेहरे की तुलना चांद से की जाती है। कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, यहाँ चंद्र, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल चांद के समान सुंदर है और शीतल है। चांद को देखने से शीतलता प्राप्त होती है, उसी तरह से भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने से हमारे हृदय में जलने वाली जो अग्नि है दावानल, वो शांत हो जाती है, शीतलता आ जाती है। इसलिए राम चंद्र मैं शाश्वत होते हुए भी क्षणभंगुर जीवन को प्राप्त क्यों हो चुका हूं? क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हम शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये सब हम भूल गए हैं। इसलिए हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में आए हैं। तो जब हम श्री कृष्ण श्री राम के शरण में जाएंगे तो फिर पुनः हमारे शाश्वत अवस्था का ज्ञान हमें हो जाएगा और फिर हम शाश्वत धाम भगवान के धाम में लौट के चले जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे कि मैंने सबको मार दिया है, लेकिन सामने थे बहुत दिन से क्वेश्चन है।
प्रश्न ये है कि युद्ध की शुरुआत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने इन सबको तो मार ही दिया है, लेकिन ये सब तो सामने खड़े थे, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तो ऐसे क्यों कहा श्री कृष्ण ने? आप में से कोई जवाब दीजिए, ऐसा क्यों कहा श्री कृष्ण ने, इसका क्या मतलब है? सपोर्ट करने के लिए नहीं, इसका मतलब ये है कि उनकी मृत्यु निश्चित थी, केवल काल का अंतर था। भगवान श्री कृष्ण ने तय कर लिया था कि ये तो मर ही गए, उनके नाम के सामने मृत्यु लिखा हुआ था, केवल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे बस। जो भी लोग मरने वाले थे कृष्ण उनकी मृत्यु की व्यवस्था कर चुके थे।